करिश्मा जी ने तारापरी को एक कड़ा दिया जो दिखने में बेहद मामूली सा था, केवल मोतियों का वर्क था उस पर। लेकिन करिश्मा जी ने कहा, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, बल्कि ये एक तिलस्मी कड़ा है। जो कोई इसे पहनता है वो इसका मालिक बन जाता है, और जैसे ही उस कड़े के मालिक के खून की एक बूंद इस कड़े पर पड़ती है, इसकी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तारापरी सांस थामकर करिश्मा जी की बात सुन रही थी। तब वो बोली, लेकिन करिश्मा मैम। करिश्मा जी उसे बीच में टोकते हुए बोली, मैम नहीं, माँ बुलाओ, अब तुम बेटी हो मेरी। तारापरी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन माँ, इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं? तब करिश्मा जी ने कहा, इसकी शक्तियों के बारे में वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी तुम आराम करो, और हाँ, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचना, और उस दानव को बिल्कुल भूल जाना, ओके? तारापरी ने हाँ में सर हिला दिया। तारापरी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि अगर आज अमन और मान नहीं होते तो पक्का वो दानव उसे ले जाता। ये सोचते ही उसके जिस्म में एक बार फिर कमकमी सी दौड़ गई और वो चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी ओर तारापरी को सुलाने के बाद करिश्मा जी सीधा अमन और मान के पास पहुंच गईं। वे दोनों भी अपनी माँ का ही इंतजार कर रहे थे। तब करिश्मा जी ने अमन से पूछा, कुछ पता चला आखिर ये दानव था कौन और कहाँ से आया था? इतना शक्तिशाली दानव तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। कितनी शक्तियां थीं उसके पास जो हम दोनों भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तब मान बोला, हाँ मॉम, आप सच कह रही हैं, वो दानव कोई आम काली शक्तियों वाला दानव नहीं था। उसकी शक्तियां हम लोगों की शक्तियों से कहीं ज्यादा थीं। और एक बात नोटिस की आप लोगों ने, वो बार बार तारा की ओर बढ़ रहा था, मानो वो उसे ले जाने के लिए ही वहां आया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो तारा का ही उस दानव से कुछ कनेक्शन हो। तब करिश्मा जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा, कि वो तारा का कोई दुश्मन था? बेटा, ये उल्टी सीधी बातें मत सोचो, और केवल इतना सोचो, भला एक मामूली इंसान का दुश्मन कोई दानव कैसे हो सकता था? तारा बेटी एक मामूली इंसान है बेटा, भला क्यों उस बच्ची का कोई दुश्मन होगा? तारा का उसे कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारी तो उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। क्या तुम नहीं जानते कितनी मुश्किल से होश आया है उसे? लेकिन माँ, तब मान आगे और कुछ कहना चाहता था, लेकिन करिश्मा जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा, उस दानव का लेना देना तारा से नहीं है, बल्कि हम लोगों से है। हम लोग जिन हैं, तिलस्मी पत्थर के रक्षक हैं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो तिलस्मी पत्थर लेने के लिए कितने दुश्मन हमारे आसपास भटक रहे हैं। आज वो दानव आया था, कल कोई और बड़ी शक्ति आएगी। ये लोग जब तक आते जाते रहेंगे, तब तक तुम दोनों का बच्चा इन सब काली शक्तियों का खात्मा नहीं कर देता। लेकिन तब तक हम लोगों को और सावधान रहना होगा। बस जल्द से जल्द कल ये शादी हो जाए, उसके बाद हम अच्छे से निपटने की तैयारी करेंगे इन काली शक्तियों से और इनके दानवों से, करिश्मा जी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। तभी अमन बोला, ठीक है मॉम, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा, और आप फिक्र ना करें, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये दानव आखिर आया कहाँ से था। अमन के मन में भी मान जैसे विचार आने लगे थे, और उसने भी शादी होने से पहले पहले तारा को सच्चाई पता करने का इरादा कर लिया था, क्योंकि उसके मन में रह रहकर एक बात घर कर गई थी कि आखिर वो दानव बार बार तारा की ओर ही क्यों बढ़ रहा था, और उस दानव की मौत कैसे हुई, ये बात तारा को कैसे पता चली, जबकि हमारे मन में तो उस दानव पर तिलस्मी पत्थर से वार करने का ख्याल तक नहीं आया था। कुछ तो गड़बड़ है, ये मिस तारा जरूर कुछ छिपा रही है। मुझे आज रात ही मिस तारा के बारे में डिटेल्स निकालनी होंगी। आखिर ये है कौन, इसके माता पिता कहाँ हैं, और कैसे एक मामूली इंसान जिन्नों के बीच रहने को तैयार हो सकता है? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी होगी मिस तारा की जो वो दो भाइयों से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी? कोई ना कोई तो होगा, ये इतनी बड़ी बात ऐसे ही तो नहीं हो गई होगी। उसकी खूबसूरती के आगे मैं इतना कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? जब तक मैं तारा के बारे में सब कुछ नहीं जान लेता, तब तक मैं उसे शादी नहीं करूँगा। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित उस छिपकली रज्जो को अपने उस मायावी शानदार महल में ले आया था। रज्जो हैरानी से उस महल को देख रही थी। अमित बोला, आओ आओ रज्जो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देता हूँ, तुम्हें कब और कैसे क्या करना है। एक बात याद रहे रज्जो, मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, तो कभी भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। तब रज्जो बोली, नहीं नहीं मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये रज्जो मरती जाएगी लेकिन आपको धोखा नहीं देगी। रज्जो ने नज़ाकत से अपनी बड़ी सी पूंछ जो अब चुटिया बन चुकी थी पीछे करते हुए कहा। अमित ने गहरी नज़र उस पर डाली और उसे अपने साथ एक अंधेरे से कमरे में ले गया। ठीक उसी कमरे के बराबर में मल्लिका बेजान सी पड़ी हुई थी। मल्लिका को उन लोगों की सारी बातें सुनाई दे रही थी। मल्लिका समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई ताकतवर काली शक्ति उस मालिक के साथ है, क्योंकि उसके आते ही पूरा का पूरा महल में एक अजीब तरह का कंपन पैदा हो चुका था। तभी मल्लिका ने मन ही मन एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। अमित को लगता था कि उसने मल्लिका के अंदर जो काली रूह डाली है वो पूरी तरह से उसके कब्जे में है, लेकिन अमित भूल गया था कि अगर कोई काली शक्ति को अपना वफादार बना ले तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो सकती थी। मल्लिका ने अपने बेजान पड़े जिस्म पर एक मंत्र फूंकना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते उसे अपने अंदर एक ताकत का एहसास होने लगा था। मल्लिका अच्छे से जानती थी जो उसे बना सकता है उसको जिंदा रख सकता है, वो उसे मार भी सकता है, और वो किसी भी कीमत पर उससे नहीं जीत सकती थी।
इसलिए मलिका ने मन ही मन इरादा कर लिया था कि वो अमन के बच्चे को जन्म जरूर देगी और अमन का बच्चा जो उसकी कोख से जन्म लेगा वो जरूर इस मालिक का सर्वनाश कर देगा। लेकिन अभी मलिका को सबसे पहले तारा को अमन की जिंदगी में आने से रोकना था, क्योंकि अगर तारा अमन की जिंदगी में चली गई तो अमन उससे बहुत दूर हो जाएगा और वो ये कभी नहीं चाहेगी। मलिका ने अपने मंत्र के द्वारा अपने जिस्म के बेजान पड़े अंगों में जान भर ली थी और इससे पहले कि अमित यानी काली शक्तियों का मालिक वहां आता उसने अपनी सारी शक्ति वापस पा ली थी और एक बार फिर से बेजान होने की एक्टिंग करने लगी थी। तभी अमित उस छिपकली से कहने लगा था, रज्जो आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना और याद रखना, हम तुम्हें एक बार फिर समझा देते हैं, हमें धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। तब रज्जो एक अदा के साथ बोली, ओहो मालिक आप मेरे आका हैं, आप मुझे जो भी हुक्म देंगे वो मुझे मंजूर होगा, आप बेफिक्र रहिए, रज्जो का एक वसूल है, रज्जो अपनी जान तो दे सकती है लेकिन अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकती है। अमित को रज्जो की बात सुनकर काफी अच्छा लग रहा था। तब उसने कहा, ठीक है रज्जो, हम तुम्हें आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम देते हैं, वो काम है तिलस्मी पत्थर। तब रज्जो बोली, ये क्या कह रहे हैं आप, तिलस्मी पत्थर? तब अमित बोला, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, तिलस्मी पत्थर। तुम्हें जिस लड़ाई के लिए बुलाया गया है वो कोई आम लड़ाई नहीं है, वो तिलस्मी पत्थर की लड़ाई है। अब तुम यहाँ आओ और अपनी आंखों से उन लोगों को देखो जिनसे तुम्हें लड़ना है। ऐसा कहकर अमित ने एक बड़े से बर्तन में जिसमें काले रंग का पानी था उसमें कुछ मंत्र पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उस काले पानी के अंदर अमन का बंगला दिखाई देने लगा था। तब अमित ने कहा, तुझे इस घर में जाना होगा, सुन रही हो तुम?
तुम्हें अमन सिंह राठौर के घर जाना होगा और वहाँ एक लड़की है जिसका नाम तारा है। इसकी शादी कल अमन और मान से होने वाली है। ये एक मामूली सी इंसान है। तुम्हें कुछ भी करके कल के कल यानी अमन और मान की इससे शादी से पहले पहले इस लड़की को मेरे पास लाना होगा। और हाँ, अगर तुम किसी वजह से इस लड़की को यहाँ तक नहीं लेकर आ पाई तो तुझे इस लड़की को वहीं ख़त्म करना होगा। अगर कल ये लड़की मेरे पास नहीं आ पाई तो कल इसकी मौत निश्चित हो जानी चाहिए, सुन रही हो ना तुम? रज्जो बोली, हाँ हाँ मालिक मैं सुन रही हूँ। तुम समझ गई ना, इस लड़की की कल शादी होने से पहले पहले या तो ये लड़की मेरे पास आएगी या फिर सीधा मौत की नींद में सोएगी। आप फिक्र ना करें मेरे आका, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। या तो ये लड़की कल आपके ख्वाबों में होगी या फिर ये इस दुनिया में नहीं होगी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी। मलिका उन दोनों की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और अपने आप ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो भी तारा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जो कि उसका काम अब उसका मालिक खुद करवा रहा था। अब बस मलिका को कुछ ना कुछ करके इस मालिक की पकड़ से कोसों दूर जाना था, जहाँ वो अमन के साथ रह सके। वहीं दूसरी ओर तारा परी का सच जानने के लिए मान उसके कमरे के बाहर चला गया था और उसने सोचा, अगर मुझे तारा की सच्चाई पता करनी है तो मुझे उसके कमरे में जाना होगा। और मान मन ही मन कह रहा था, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बार एक गलत साबित हो जाऊँ, तारा का कोई राज ना हो, वो जैसी दिखती है वैसी ही हो, एकदम प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की। मान मन ही मन इरादा करता हुआ तारा परी के कमरे में घुसने का रास्ता खोजने लगा था, लेकिन अंदर से कमरा लॉक था, इसलिए मान ने अपनी पतला होने की शक्ति का प्रयोग किया और एकदम पापड़ जितना पतला हो गया था और वो तारा परी के कमरे का जो दरवाज़ा था वो हल्का सा उठा हुआ था। सो मान धीरे धीरे बंद दरवाजे के नीचे से निकलता हुआ तारा परी के कमरे में जा पहुंचा था।